नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगत चंदौली
और मैं प्रेमा नेगी हाजिर है एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है
नई दिशा। अच्छा प्रेमा, जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो हम अक्सर दूसरों को देखकर सीखते हैं।
जैसे?
जैसे समाज में उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना, आपस में अच्छा व्यवहार करना।
हाँ हाँ।
और तो और प्रेमा, मेरे माता पिता तो मुझे अक्सर बचपन में पड़ोसियों के बच्चों का ही उदाहरण दिया करते थे। कहते थे, जगत अगर शर्मा जी का बेटा राहुल मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकता है तो तुम क्यों नहीं।
हालांकि बच्चों पर इस तरह का दबाव डालना बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर मैं समझ रही हूँ क्या कहना चाहते हो।
और ये बात हमारे श्रोताओं पर भी लागू होती है प्रेमा।
हाँ, होती तो है।
तो यही सोचकर आज हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है कुछ ऐसे लोगों को जो HIV पॉजिटिव होने के बावजूद एक बेहतरीन जीवन बिता रहे हैं।
और उन लोगों से मिलने के बाद हमारे श्रोता जान पाएंगे कि HIV पॉजिटिव लोग सुखी वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं।
बिल्कुल।
तो फिर देर किस बात की जगत, बुलाएं हमारे आज के मेहमानों को।
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे भाई, जरा जानो अनजाने की शुरुआत तो हो लेने दो।
तो दोस्तों, जानो अनजाने में बुलाते हैं हमारे आज के मेहमानों को। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम भगवती है और मैं पिछले 3 साल से HIV पॉजिटिव हूँ और एक नई उमंग पॉजिटिव वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है जिसमें मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट उसमें कार्यरत हूँ।
जी, मेरा नाम सपना है, मैं पिछले 8 साल से HIV पॉजिटिव हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ।
मेरा नाम कुमार है और मैं पिछले 10 साल से HIV पॉजिटिव हूँ और मैं भी नई उमंग पॉजिटिव वेलफेयर सोसाइटी में एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करता हूँ।
अच्छा, आप लोगों से मेरा पहला सवाल ये है कि आप HIV के संपर्क में कैसे आए? शुरुआत हमें करनी पड़ेगी भगवती जी से, आप बताइए।
जैसा कि आप लोगों को शायद पता ही होगा कि HIV फैलने के 4 कारण हैं। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब मुझे ब्लड भी चढ़ाया गया था और जैसा कि आप जानते हैं सेक्स के द्वारा भी HIV फैल सकता है, तो मेरे अपने पति से सेक्स संबंध भी रहे हैं, तो शायद उन 2 कारणों में से मुझे किसी 1 कारण में से हुआ है, बस मैं यही कहना चाहूंगी।
अच्छा, आप बताइए सपना जी।
मुझे मेरे हस्बैंड से हुआ है।
अच्छा अच्छा अच्छा, कुमार जी आप बताइए।
देखिए, ये बोलना बहुत कठिन है, आपने पूछा, लेकिन हम ये हमारा जो श्रोता है उनके लिए बताना चाहता हूँ कि हमको सेक्स का द्वारा ही ये वायरस हम प्राप्त किया और इसके बारे में मैं खोल के बताया कि श्रोताओं के लिए जो वल्नरेबल है या जो एडोलेसेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा सीख है और हमसे सीख सकता है कि उनको भी ये हाई रिस्क बिहेव में कभी जाना भी नहीं चाहिए और जाना भी पसंद करेंगे तो उसके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है मार्केट में, वो इख्तियार करना बहुत जरूरी है।
आपने इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अब रुख करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हमेशा कंडोम के साथ सेक्स करना हो, हमेशा सावधानी बरतनी हो और बच्चों की चाहत के प्रश्न पर अगर सोच विचार करना पड़े आप लोगों को, तो इन सब बातों से आप कैसे जूझते हैं?
मैं एक HIV पॉजिटिव महिला हूँ, वैसे तो ऑलरेडी मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मान लीजिए अगर मुझे अगला बच्चा चाहिए और साथ ही साथ मुझे ये भी सोचना है कि अगर मैं बच्चा पैदा करती हूँ तो उसकी HIV से सुरक्षा भी करनी है, तो एक बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मैं कैसे अपने बच्चे को इससे बचाऊँ। तो वैसे तो आजकल मार्केट में एक मेडिसिन है जिससे बच्चे को HIV पॉजिटिव होने से बचाया भी जा सकता है, पर उसमें भी 100% हम नहीं कह सकते कि बच्चा HIV नेगेटिव ही होगा। तो ये मेरा अपना डिसीजन है कि मुझे बच्चा करना है या नहीं करना, तो इसमें मेरी मदद जो एक काउंसलर और एक डॉक्टर भी कर सकते हैं कि मुझे मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत होगा और मैं बच्चे को कैसे बचा सकती हूँ, और अगर बच्चा पैदा भी किया जाए तो उसे डॉक्टर की देखरेख में पैदा करके भी बच्चे को HIV पॉजिटिव होने से बचाया जा सकता है।
बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा सपना जी, आप इसमें और क्या कहना चाहेंगी?
मैं ये कहना चाहूंगी, बच्चे की ख्वाहिश तो जो HIV पॉजिटिव उनको भी होता है, जिनके पास बच्चे नहीं है तो वो भी बच्चे कर सकते हैं, बच्चे करना कोई ये नहीं है जो हमें डर है जो हमारा बच्चा पॉजिटिव होगा हम नहीं करेंगे, ये जब मेडिसिन लेने के बावजूद भी बच्चे पॉजिटिव हो सकता है।
आप इसमें मुझे लगता है ये भी शायद चाहती होंगी कि क्या इसमें डॉक्टर की सलाह जरूरी है?
हाँ, डॉक्टर की भी सलाह लेना है, जब इस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से दवाई खाना है, क्या करना है, तो डॉक्टर का सलाह भी लेके ही करना चाहिए बच्चा।
बिल्कुल सही। अच्छा कुमार जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हमने एक डिसीजन लिया कि बच्चा हमें पैदा करना है, तो क्या इसमें दोनों की राय जरूरी है या सिर्फ एक की राय काफी है?
जब हम लोग कोई डिसीजन लेता है, क्योंकि ये हमारा जिंदगी का सवाल नहीं है, ये हमारे बच्चे का जिंदगी का सवाल है, जब उसका जिंदगी का सवाल है तो हमको पूरी तरह पूरा उसका सोच समझ के हमको डिसीजन लेना पड़ता है। इसमें जितना कि हमारा पति पत्नी का राय लेना जितना जरूरी है, उतना डॉक्टर का सलाह लेना भी जरूरी है और काउंसिलर का सलाह लेना भी बहुत जरूरी है इसमें।
बिल्कुल सही कहा, मुझे एक कहावत याद आ गई कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।, कोई
बिल्कुल जी।
और दोस्तों, फिलहाल हम आपके मन की स्थिति को समझ सकते हैं, बखूबी समझ सकते हैं। आप जरूर बेताब हो रहे होंगे इस हफ्ते के विजेता का नाम जानने के लिए। तो आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट भेजा फ्राई की तरफ।
तो दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, HIV किस तरह का वायरस है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रेट्रोवायरस।
और दोस्तों, एपिसोड 42 का सही जवाब देकर हमारी आज की भेजा फ्राई कैप के विजेता बने हैं देवेंद्र शर्मा, चंबा यूपी से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, एक सामान्य व्यक्ति में CD4 की संख्या कितनी होती है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, एक सामान्य व्यक्ति में CD4 की संख्या कितनी होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 200 से 500, बी 500 से 1200, सी 700 से 1000 और डी 1000 से 1500। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए, ए 200 से 500, बी 500 से 1200, सी 700 से 1000 और डी 1000 से 1500।
तो दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND46 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी और लिखकर भेज दीजिए 97176782223 पर, यानी 97176782223 पर।
और आइए अब अपनी बातचीत का सिलसिला फिर से आगे बढ़ाते हैं हमारे सेगमेंट आमने सामने में।
आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या HIV की वजह से आपके दूसरे रिश्तों में, मेरा मतलब है समाज में या सगे संबंधियों से, कोई मनमुटाव या रिश्तों में कोई दरार आई है?
जहाँ तक मेरा परिवार और हमारा, मैं जहाँ रहता हूँ वो समाज की बात, समाज में तो हमको हमारा स्टेटस के बारे में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड है नहीं। हमारा पापा मम्मी बचपन में गुजर गए, एक बहन है उसका साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। बाकी रहा मेरा ससुराल, उनको उन लोगों को मालूम होने के बाद उन लोगों को बिल्कुल ऐसा कोई भी नेगेटिव रिस्पांस हमारे पास अभी तक नहीं आया। वो लोग सब कोई जानते हैं और जानने के बावजूद भी हमारे साथ रिलेशन पहले से और बेहतर है।
सच में वाकई खुशी हुई कि आज भी ऐसे लोग हैं इस समाज में जो सहानुभूति जताते हैं और सच में ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं जो वाकई में तारीफ के काबिल है। कुछ और आप कहना चाहेंगे?
हाँ जी जगत जी, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी। कुमार जी ने जैसा कि कहा कि अभी तक कोई भी नेगेटिव रिस्पांस उनकी ससुराल से जैसे कि नहीं आया है, पर शायद सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, सबको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो उसकी चाहत होती है। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैं शादी होकर के अपने ससुराल में आई और शादी के एक साल के बाद जब मुझे बेटा हुआ और बेटे की डेथ हो गई, तब डेथ के बाद फिर दूसरी बेटी पैदा हुई, तब उसके बाद हमें जाकर के पता चला कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ और मेरे हस्बैंड भी एचआईवी पॉजिटिव हैं। तब तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे जो परिवार वाले थे उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया क्योंकि मेरे हस्बैंड की लगभग डेथ होने ही वाली थी, पर लकी हूँ मैं कि आज वो मेरे साथ हैं। वो सब मेरी शायद आप किस्मत कह सकते हैं, मेरा भगवान का साथ समझिए, कुछ भी कहिए कि वो आज हम सबके बीच मौजूद हैं। अगर शायद उनको उस वक्त कुछ हो जाता, अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते, तो मेरे ससुराल वालों ने तो बिल्कुल मन बना लिया था कि हम यानी कि मुझे वो लोग घर से बाहर कर देंगे क्योंकि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ और ये बीमारी मैंने ही मेरे हस्बैंड को दी है। उन्हों का इस तरह का रिस्पॉन्स था। लेकिन आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा भी एचआईवी नेगेटिव है। इसके बावजूद भी मेरे ससुराल वाले मेरा आज भी साथ नहीं देते। मेरा प्रॉपर्टी में जो हक है वो हक मुझे आज तक भी नहीं मिला।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती। और आपकी बात सुनकर मुझे एक शेर याद आ गया कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए।
किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों के गीले आंसू चलते हैं।
तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के मेहमानों से बातचीत, जिसमें आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन्हें आपने हमारे पास भेजा है खतों और ईमेल के जरिए। तो देते हैं आपके सवालों के जवाब आपकी बात में।
तो दोस्तों, आपकी बात में आज हम जो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं, इसे हमें भेजा है योगेश जी ने मुंबई से। और वो ये पूछ रहे हैं कि मैं पिछले 5 सालों से हस्त मैथुन कर रहा हूँ, क्या हस्त मैथुन करने से एचआईवी हो सकता है? नहीं योगेश जी, हस्त मैथुन करने से एचआईवी एड्स नहीं हो सकता। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि हस्त मैथुन से किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप हमसे एचआईवी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप अपना सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें चिट्ठी और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYEDISHA@gmail.com।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपके मनोरंजन का, यानी कि हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह का।
तो आइए सुनते हैं धारावाहिक जीवन की राह की 46वीं कड़ी। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, सूरज जो दवाइयों का पैकेट जयपाल के लिए भेजता है वो प्रधान के हाथ लग जाता है, और प्रधान को जयपाल के एचआईवी पॉजिटिव होने की बात मालूम चल जाती है।
उधर डॉक्टर विनोद को बताता है कि उसने ब्लड डोनेशन कैंप में जो रक्त दिया था वो एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है, जिससे विनोद काफी परेशान हो जाता है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
मेरे जमीन पर नहीं है कदम आज।
अरे अरे रविता, कहाँ से आ रही है और क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है।
ओ कटोरी, आज सच मुझ में बहुत खुश हूँ।
अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तेरे पैर जमीन पर नहीं टक रहे हैं?
कटोरी, वो विनोद है ना?
हाँ हाँ, विनोद।
हाँ, वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है।
और क्या तू भी?
हाँ कटोरी, मैं भी उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ।
क्या, तूने ये बात अपनी माँ को बताई?
नहीं नहीं, अभी नहीं।
रबीता, अपनी माँ को ये बात जल्दी से जल्दी बता दे,
कहीं ऐसा न हो तू फिर से कोई गलती कर बैठे। और नहीं कटोरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, विनोद ने मुझसे वादा किया है।
लेकिन फिर भी रबीता, वो शहर में रहकर आया है, पता नहीं वहाँ कैसे रहता होगा, किस किस के साथ रहता होगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?
मैं सब समझ रही हूँ कटोरी। तुम नहीं चाहती ना कि मेरी और विनोद की शादी हो?
नहीं नहीं रबीता, मेरा वो मतलब नहीं था।
मुझे अब समझाने की कोशिश मत करो कटोरी, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गई हूँ। लेकिन मैं भी तुम्हें ये बात पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि विनोद अब बदल चुका है।
रबीता मुझे गलत मत समझो, मैं कोई तुम दोनों के खिलाफ थोड़े ना हूँ।
कटोरी बस, मुझे देर हो रही है, मैं घर जाती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी।
रबीता रबीता रबीता, भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा।
जयपाल, ओ जयपाल, बाहर निकल, तू क्या सोचता था तेरे बारे में यहाँ किसी को कुछ पता?
ये प्रधान जी की आवाज है ना?
हाँ लगता तो ऐसा ही है।
सुबह सुबह हमारे यहाँ, और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं ये?
अबे तू बाहर निकलता है या नहीं?
मैं देखता हूँ लक्ष्मी, तुम यही रहो।
तू बाहर निकलता है या नहीं, मुझे तेरी सारी करतूतों का पता चल चुका है।
प्रधान जी आप?
हाँ, आखिर तुझे बाहर आना ही पड़ा। तू डर गया ना कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है?
प्रधान जी ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और देखिए आप अंदर आइए ना, यहाँ सब लोग बेकार में इकट्ठा हो जाएंगे।
अरे अब तो गांव भर को इकट्ठा करना है, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। सूरज की भेजी ये चिट्ठी और ये दवाइयाँ मुझे बता चुकी है कि तू वो गंदगी है जो शहर से इस पूरे गांव को गंदा करने आया है।
प्रधान जी लेकिन मैं तो,
और अब मैं तुझे एक पल भी इस गांव में रहने नहीं दूंगा।
प्रधान जी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वरना मैं कहाँ जाऊँगा?
कहीं भी जा,
अगर गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया तो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं और मेरा परिवार सब कुछ बिखर जाएगा। प्रधान जी भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ प्रधान जी।
अबे हट, तेरा फैसला मैं नहीं गांव के लोग करेंगे, और वो भी पंचायत में।
प्रधान जी नहीं, देखिए मेरे पास,
और मुझे भी तब चैन आएगा जब ये सारे गाँव वाले खुद धक्का देकर तुझे और तेरे परिवार को इस गांव से बाहर निकालेंगे।
प्रधान जी ऐसा मत कीजिए, प्रधान जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा प्रधान जी।
अरे सुमन बेटा, आज तो तेरी परीक्षा है और तू अभी तक इन सब कामों में लगी हुई है।
बस माँ हो गया, और वैसे भी मैंने रात को ही परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है।
अच्छा ठीक है, चल अब ये सब छोड़ और फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जा, बाकी के काम मैं कर लूँगी।
अच्छा माँ ठीक है, लेकिन मेरे पीछे से कोई भी भारी काम मत करना, मैं स्कूल से लौट कर सब कर लूँगी।
अच्छा बाबा ठीक है, चल मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तू फटाफट नहा ले और तैयार हो जा।
हाँ माँ जाती हूँ।
नहीं, नहीं, नहीं भगवान नहीं, ये मेरे साथ क्या हो गया? भगवान मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियां की हैं और मुझे उनकी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी सजा तो मत दो कि मेरी जिंदगी किसी और के लिए सजा बन जाए। मैं रबीता को क्या जवाब दूं? उसे मैं धोखा नहीं दे सकता और अब उसे शादी भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं?
विनोद
माँ, हाँ माँ।
विनोद क्या बात है बेटा, ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा था?
कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही अकेले बैठने का दिल कर रहा था तो बस यूं ही।
क्या बात है, ये तेरी आंखें क्यों लाल है बेटा?
हाँ कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही।
तू रो रहा था या फिर तूने फिर से तूने शुरू कर दिया वो सब?
ना, नहीं माँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ पुरानी यादें आ गई थी तो आंखों में से आंसू निकल आए।
उन दिनों को याद मत कर बेटा, जो हो चुका है वो तेरा बीता हुआ कल था, उसे एक बुरा सपना समझकर भुला दे बेटा।
हाँ हाँ माँ।
ये चाय रखी है, ठंडी होने से पहले पी लेना।
ठीक है माँ, ठीक है। काश के माँ मैं अपने अतीत को बुरा सपना समझकर भूल जाता, लेकिन अतीत ऐसा है कि उसने मेरे वर्तमान और भविष्य दोनों को निगल लिया है। माँ चाहकर भी मैं अब अपने अतीत से कभी मुंह नहीं मोड़ पाऊंगा। माँ कभी मुंह नहीं मोड़ पाऊंगा।
अरे मोहित, यहाँ क्या कर रहा है? किसी का इंतजार हो रहा है क्या?
अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही।
ऐसे तो नहीं, कुछ तो बात है।
अरे नहीं यार, वो सुमन ने परीक्षा शुरू होने से पहले मिलने के लिए बोला था, बस वही।
देखा तो बात वही निकली ना जो मैं सोच रहा था।
अरे नहीं सुरेंद्र।
मोहित मोहित।
लो वो आ गई, अब वो तुम्हारे सामने ही बता देगी उसने मुझे किस लिए मिलने के लिए बोला था।
देख लेते हैं।
मोहित लो, जल्दी से हाथ आगे करो।
क्यों?
अरे प्रसाद हाथ में ही लोगे ना, देवी माँ का प्रसाद है, देखना परीक्षा जरूर अच्छी होगी तुम्हारी।
ओ हाँ।
ये लो।
हाँ सुरेंद्र, पता चल गया मुझे सुमन ने क्यों बुलाया था।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
क्यों मोहित, सुरेंद्र कुछ कह रहा था क्या?
अरे नहीं नहीं सुमन भाई, मुझे भी तो प्रसाद दो, परीक्षा तो मेरी भी है।
हाँ हाँ लो, तुम भी लो।
हाँ ये हुई ना बात।
अरे चलो चलो, परीक्षा शुरू हो गई।
हाँ हाँ, हाँ, हाँ चलो, चलो, चलो चलो।
हैरान है हम हुए क्यों तुम गैरों से, कैसा है गम बोलो ना तुम होठों से, ना तुम हो बेवफा ना मैं भी हूँ, फिर भी है हम जुदा मैं क्या कहूँ।
तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारा रेडियो धारावाहिक जीवन की राह, जिसका मकसद आपको मनोरंजन के साथ साथ HIV के प्रति जागरूक बनाना है।
और अगर आप HIV के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं, तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए। दोस्तों बाकी लोगों को भी HIV के प्रति जागरूक बनाइए।
दोस्तों आज हमारे देश में कई सारे युवक युवतियां HIV के शिकार हो रहे हैं, उन्हें HIV से कैसे बचाया जा सकता है?
सिर्फ और सिर्फ HIV के बारे में पूरी जानकारी देकर। तो हमारा आज का सवाल, जो कि हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने हमारे कुछ श्रोताओं से पूछा, कुछ इसी से मिलता जुलता है। सवाल था, युवाओं और युवतियों को HIV के खतरे से बचाए रखने के लिए समुदाय क्या क्या कदम उठा सकता है।
और अब आपको सुनाते हैं हमारे श्रोताओं के जवाब।
हम लोगों को चाहिए कि उसके बारे में सबको बताया जाए, आज के जो जितने भी युवा पीढ़ी के हैं, युवतियां हैं, जो भी हैं, उसको बल्कि प्रचार प्रसार हो सके तो स्कूल स्कूल में जा करके अगर हम करेंगे तो उसका प्रचार प्रसार और अच्छा होगा।
युवक तथा युवतियों को HIV के खतरे से बचाने के लिए समुदाय के सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को यौनरोग तथा एड्स के बारे में सभी जानकारी देनी चाहिए, तथा अपनी लड़की और लड़कों को पढ़ाई लिखाई पर जोर देना चाहिए ताकि उनमें ये जानकारी आ सके।
हर लोग ऐसा नहीं कि इस बारे में खुली बात कर सके, है ना, कुछ समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, जितने भी हैं, आजकल संख्या बहुत ज़्यादा है उन लोगों की, तो वो इसका प्रचार प्रसार करके इसके बारे में जिनको जानकारी है एक दूसरे से उसको जानकारी को बताएं, इसके उसको बांटें, जानकारी बचाओ इसके बारे में, जो अगर जानकारी है तो बहुत बड़ी एक हम जो परेशानी जो एक बीमारी है इससे बच सकते हैं।
समुदाय उन्हें जागरूक कर सकता है, उन्हें जानकारी दे सकता है और युवक युवतियों को आपस में चर्चा करने की सलाह दे सकता है।
तो दोस्तों ये थे आप ही के जैसे हमारे कुछ श्रोताओं के विचार।
जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस सवाल का सबसे सही और महत्वपूर्ण जवाब है कि हम अपने नवयुवकों और नवयुवतियों को HIV के बारे में जानकारी देने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, उनके सवालों का खुलकर जवाब दें।
तो दोस्तों हम धन्यवाद करते हैं हमारे सामूहिक संवाददाताओं का, जो जागरूकता के इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा दोस्तों हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के भी शुक्रगुजार हैं, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है।
साथ ही हम हेवलवानी और मंदाकिनी की आवाज़ सामुदायिक रेडियो का भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारी आवाज पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दराज तक पहुंचाने का काम करते हैं।
और दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां हमें आपसे और बतियाने का समय नहीं दे रही हैं। बहरहाल हमें यानी मुझे और प्रेमा को दीजिए इजाजत। हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।